लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि खेल लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण साक्षात्कार का अवसर बने तथा विश्व शांति में योगदान दें। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओ, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। ईश्वर, तू आदिकाल से मेरा राजा है और पृथ्वी पर लोगों का उद्धार करता आ रहा है। तूने अपने सामर्थ्य से समुद्र को विभाजित किया और जल में मगरमच्छों के सिर टुकड़े टुकड़े कर डाले। तूने लिवियातन के सिर तोड़ डाले और उसे समुद्र के जंतुओं को खिलाया। तूने झरने और जल धाराएं बहाई और सदा बहने वाली नदियों को सुखाया। दिन तेरा है, रात भी तेरी है। तूने चंद्रमा और सूर्य को स्थापित किया। तूने पृथ्वी के सीमांतों को निर्धारित किया। तूने ग्रीष्म और शीतकाल बनाया। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 74वें भजन के 12 से लेकर 17 तक के पदों के शब्द, जिनकी व्याख्या हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की थी। 74वें भजन का रचयिता जेरूसलम के मंदिर तथा जेरूसलम के निकटवर्ती गांवों के आराधनालयों के विनाश पर विलाप करता है। ईश विरोधियों ने प्रार्थना गृहों में कोलाहल मचाया था। उन्होंने वहां अपने विजय झंडे फहराए तथा ईश भक्तों की आराधना को पूर्णतया समाप्त करने का दुस्साहस किया था। इसीलिए 74वें भजन का रचयिता मन से चाहता है कि प्रभु ईश्वर विध्वंसकारियों को रोकें तथा उन्हें उनके कुकर्मों के लिए दंडित करें। श्रोताओ, भजनकार एक धर्म परायण व्यक्ति है। वह अपने दायित्वों का निर्वाह करने वाला व्यक्ति है तथा इस तथ्य से परिचित है कि उसके पास जो कुछ है अथवा जो कुछ वह करने में सक्षम है, वह सब ईश कृपा का परिणाम है। इसीलिए 12 से लेकर 17 तक के पदों में ईश्वर के अभूतपूर्व कार्यों का स्मरण करता है। वह पीछे मुड़कर इतिहास पर दृष्टि डालता और याद करता है कि बुराई की शक्तियों को ईश्वर ने सदैव पराजित किया है। इज़राइली जाति का मिस्र की दास्ता से मुक्त होना, प्रतिज्ञात देश तक पहुंचना, लाल सागर का विभाजित हो जाना, ईश प्रजा का समुद्र पार करना और फिर आतताइयों के आने पर समुद्र का फिर से भर जाना तथा उसमें उनके घोड़ों सहित मिस्र के अहंकारियों का जल मग्न हो जाना, यह सब कुछ ईश्वर के ही सामर्थ्य से हुआ था। प्रभु ईश्वर ने उस समय ईश भक्तों की सुधि ली थी और आज भी वे उनकी सुधि लेते हैं। सृष्टि की रचना के आरंभिक बिंदु से लेकर आज तक प्रभु ईश्वर क्रियाशील हैं। उनके सामर्थ्य से ही शैतान को परास्त किया जा सका। ईश्वर के सामर्थ्य से ही प्रकाश हुआ और उसे अंधकार से अलग किया जा सका। अथाह गर्त से ईश्वर मनुष्यों के लिए भलाई को सींच कर ले आए थे ताकि मनुष्य सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके तथा प्राप्त कृपाओं के लिए प्रभु का गुणगान किया करे।
धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान। परम विशाल सभा में तुझको धन्यवाद दूंगा भगवान, जन समूह के बीच करूंगा प्रभुवर मैं तेरा गुणगान, प्रभुवर मैं तेरा गुणगान, धन्यवाद दूंगा भगवान।
श्रोताओ, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि दुष्ट राजा नबूखदनज़र ने लगभग 587 ईसा पूर्व जेरूसलम और उसके आसपास विनाश का तांडव रचा था। उसका लक्ष्य प्रभु यावे की भक्ति को पूर्णतया समाप्त कर देना था, ताकि लोग ईश्वर का परित्याग कर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें तथा उसी को अपना राजा और प्रभु मान लें। अपने इस कुषडयंत्र में नबूखदनज़र सफल नहीं हुआ। प्रभु ईश्वर के कार्यों और उनके रचनात्मक प्रयोजनों को वह परास्त नहीं कर सका, इसलिए कि प्रभु ईश्वर अनंत, अनादि और चिरकालिक सृष्टिकर्ता हैं। दुष्ट को भलाई की ओर अभिमुख कर वे बुराई पर भलाई को विजयी होने देते हैं, जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ के 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। लिखा है, इसके बाद मैंने एक स्वर्ग दूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्त की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प यानी शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर उस पर मोहर लगाई, जिससे वह सर्प 1000 वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्रों को नहीं बहकाए। इसके बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाना आवश्यक है। यहाँ श्रोताओं, अगाध गर्त से तात्पर्य उस स्थान से है जो कुछ स्वर्गदूतों द्वारा ईश्वर के हुक्म को तोड़ने तथा ईश्वर का विरोध करने के उपरांत अस्तित्व में आया था। अस्तु, अगाध गर्त वह स्थल है जहाँ इब्लिस यानी कि शैतान का बोलबाला है तथा जहाँ पतित स्वर्गदूत अंतिम समय के दंड तक कैदी बने रहेंगे। इसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ की यह पंक्ति कि थोड़े समय के लिए शैतान को छोड़ दिया जाना आवश्यक का अर्थ है कि शैतान के क्रियाकलापों की अवधि बहुत छोटी होती है तथा उसका विनाश अवश्यम भावी है। जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ के 11वें अध्याय के 2 पद में इसे सिर्फ 42 महीनों का बताया गया है। अस्तु श्रोताओं, 74वें भजन का रचयिता यह कह रहा था कि प्रभु ईश्वर ने सदैव और सर्वत्र कृपामय कार्य किए हैं, हालांकि सब समय मनुष्य इन्हें परख नहीं पाता है। आगे 74वें भजन के 18वें और 19वें पदों में भजनकार कहता है, प्रभु याद कर कि शत्रु ने तेरी निंदा की है और एक ना समझ राष्ट्र ने तेरे नाम का उपहास किया है। अपने भक्तों के प्राण जंगली पशुओं के हवाले मत कर, अपने दरिद्रों का जीवन कभी मत भूला। भजनकार प्रभु ईश्वर से विनती करता है कि वे इस बात को याद करें कि उन्हीं ने इज़राइल को अपनी विशेष प्रजा चुना है, उन्हीं ने उन्हें विश्व में भलाई का अस्त्र बनाया, उन्हीं ने ईश प्रजा इज़राइल के माध्यम से प्रेमपूर्ण मानव समाज की रचना करने की योजना बनाई। कहता है, हम दीनहीन मनुष्य हैं, तेरे विनीत सेवक हैं, जिन्हें तूने कपोत अर्थात शांति के प्रतीक की संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि तेरी इच्छा थी कि हम संपूर्ण निनिवे को सुसमाचार सुनाएं। निनिवे जो पशुओं का खूंखार पशुओं का गढ़ है, अब ये पशु तेरी निंदा कर रहे हैं, तो फिर तू क्यों मौन धारण किए हुए है? श्रोताओं, प्रायः ऐसे क्षण हमारे जीवन में भी आते हैं। अपनी आंखों के समक्ष हम धूर्त दुष्ट और कुकर्मी को सफल होते देखते हैं। उन्हें हम धर्मपरायण सीधे सरल लोगों को प्रताड़ित करते देखते हैं और हमारे मन में यही प्रश्न बारंबार उठता रहता है कि ईश्वर है कहाँ, ईश्वर क्यों चुप बैठा है। स्तोत्र ग्रंथ का 74वां भजन एक प्रकार से समस्त दुख उठाने वाले लोगों को आश्वासन देता है और उन्हें याद दिलाता है कि शैतान अर्थात दुष्ट की अवधि बहुत छोटी होती है, अंत में विजय भलाई की ही होती है।
धन्यवाद दूंगा भगवान, परम विशाल सभा में तुझको धन्यवाद दूंगा भगवान, जन समूह के बीच करूंगा प्रभुवर मैं तेरा गुणगान, प्रभुवर मैं तेरा गुणगान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान। मेरी दशा देख अन्यायी शत्रु न हंसने पाए और कटाक्ष अकारण कर वे घृणा न करने पाए, क्योंकि नहीं लगती है उनको भली शांति चर्चाएं, शांत स्वदेशवासियों के प्रति वे करते छल छंद विधान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान। उठ सचेत हो मेरे प्रभुवर, मेरी रक्षा को तैयार, मेरे स्वामी मेरे ईश्वर, मेरे हित का करो विचार।